Why did Paul circumcise Timothy?
क्यों पौलुस ने तिमोथियस का खतना किया?
Let's ask this group over here.
यहाँ से जो समूह है, यहाँ बताइए, इस समूह में क्यों पौलुस ने तिमोथियस का खतना किया? कौन बताएगा इधर? बोलिए बोलिए. आपको नहीं, दोपहर में खाने बाद सोए या बात करी?
Or let's ask this group.
हाँ.
Why did Paul circumcise Timothy?
क्यों पौलुस ने तिमोथियस का खतना किया? बताइए भैया. हाँ बताइए. अंगद भैया बोल रहे हैं. He's saying that Titus was circumcised, not Timothy's.
No. Timothy was circumcised.
आप पढ़िए फिर से.
Acts 16.
प्रेरितों काम उसका 16 अध्याय में जो पद दिए गए उस पर तीतुस तीमुथियुस का वर्णन है. तीमुथियुस का वर्णन है, तीतुस का नहीं है. पिताजी यूनानी थे. फादर वॉज ग्रीक एंड अच्छा बिकॉज ही वॉज फ्रॉम जेंटाइल एंड हिज मदर वॉज फ्रॉम ज्यूज एंड ही वॉज फ्रॉम द ट्राइब ऑफ दिस अब्राम एंड सो दैट्स व्हाई दे फुलफिल द लॉ बिकॉज ऑफ दैट अब्राम.
All right, anybody else have an answer?
कोई और किसके पास है कोई उत्तर? Because he was a son of a believer woman. Because Paul wanted to win Jews. Because Paul was going to work among the Jews, that's why he did that.
Any other answers?
और कोई? Yes. वही बोला, वही बोला उन्होंने. पीछे पीछे. हाँ. Because he was fulfilled the law in that, and other side he did on the work according to grace.
All right. Why did he not?
Because of the Jews.
All right. All right. Why did he not circumcise Titus?
क्यों तीतुस का उसने खतना नहीं किया? Because of the Gentiles. Saying. Or?
All right, anyone else? Why did he not circumcise Titus?
क्यों उसने तीतुस का खतना नहीं किया? और कोई? हाँ तो बोल दिया, वो तो बोल दिया. Because that time many people they become believer and now many people they were now that aware that now only by faith they can save, not by the circumstances. Right. In the beginning. वही same thing. वही बताया. Same thing.
Any other answers?
कोई और? Because he was not Jewish. Because he was not Jew.
Well, all those answers are good and right.
सारे उत्तर सही और अच्छे हैं.
We have two main things.
लेकिन दो मुख्य कारण हैं.
Two different young men.
दो युवा पुरुष हैं.
And two different context.
और दो विभिन्न संदर्भ हैं.
What was Timothy?
तीमुथियुस कौन है?
His mother was a Jew, his father was a Gentile.
उसकी माता यहूदी है और उसका पिता अन्यजाति है.
What was the context?
उसका संदर्भ क्या है?
Unbelieving Jews.
वो अविश्वासी यहूदी.
What was Titus?
और तीतुस क्या है?
A Gentile.
वो अन्यजाति है.
What was the context?
उसका संदर्भ क्या है?
False brethren.
वो जो झूठे भाई लोग हैं.
False brethren insisted that you must be circumcised in order to be saved.
तो जो झूठे भाई लोग हैं वो उस बात पर जोर दे रहे हैं कि तुम्हें खतना करना है.
Why did Paul circumcise Timothy?
Timotheus ko kyun khatna kiya Paul usne dara?
He wanted to be all things to all men so that he might win some.
Ki wo isliye taki sab kuch sabke liye kiya jaye taki wo logo ko jeet sake.
1 Corinthians chapter 9.
Pehla Corinthians ka nawa adhyay.
To the Jews I became as a Jew.
Wo Yahudiyon ke liye Yahudi bana.
That I might win the Jew.
Taki main Yahudi ko jeet sakun.
To those under the law I became under the law.
To jo vyavastha ke adheen hai vyavastha se chhudaya jaye.
So that I might win those under the law.
Taki wo jo vyavastha ke adheen hai unko chhudaya ja sake bachaya jaye.
The context for Timothy was preaching the gospel to unbelieving Jews.
Wo jo sandarbh hai Paulus ka Timotheus ke sambandh mein वो ये है कि वो अन्य जाति अविश्वासी यहूदियों को प्रचार कर रहा है
and he did not want Timothy's uncircumcision to hinder the preaching of the gospel
और वो ये नहीं चाहता था कि तिमोथियस का खतना ना करने के द्वारा जो सुसमाचार वहां प्रचार होता था उसमें कोई बाधा या रुकावट आए
But when Paul went to Jerusalem with Titus, it was a different context.
लेकिन जब वो तीतुस के साथ यरूशलेम जाता है, तो वहाँ दूसरा संदर्भ है।
It was not unbelieving Jews.
वहाँ पर अविश्वासी यहूदी नहीं है।
It was professing Christian Jews.
वो यहाँ पर ऐसे यहूदी हैं जो अपने आप को मसीह कह रहे हैं।
That said you had to be circumcised in order to be saved.
और अब ये कह रहे हैं कि तुमको उद्धार पाने के लिए खतना करना है।
With Timothy, the issue was preaching the gospel.
तिमोथियस के साथ वहाँ पर जो मुख्य विषय था कि सुसमाचार प्रचार किया जाए।
With Titus, the issue was protecting the gospel.
और यहाँ पर जो तीतुस के साथ था, वो सुसमाचार की रक्षा या सुरक्षा की जाए।
Paul said, "You're not saved by works."
और तब पौलुस कहता है, तुम कार्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ।
You're not saved by circumcision.
तुम तुम्हारा खतना द्वारा उद्धार नहीं हुआ।
And they wanted to circumcise Titus.
और वो तीतुस का खतना करना चाहते थे।
They said, "If you don't circumcise Titus, he can't be saved."
और वो ये कहते थे कि अगर तू तो उसको खतना नहीं होगा, तो उद्धार नहीं प्राप्त करेगा।
Paul said they were false brethren.
और तब पौलुस कहता है, वे झूठे भाई हैं।
And we did not submit to them.
और इसलिए हमें अपने आप को उनके अधिकार में नहीं डालना।
In order that we might protect the truth of the gospel.
ताकि हम उस सुसमाचार के सत्य की सुरक्षा कर सके।
Do you see the difference?
क्या आप दोनों में भिन्नता देख रहे हैं?
Or look in the book of Acts.
प्रेरितों काम की पुस्तक में देखिए।
Chapter 21.
उसके 21वें अध्याय में।
Verse 17 and following.
और 17 पद से आगे।
We arrived in Jerusalem. The brethren received us gladly.
और जब हम यरूशलेम में पहुंचे, लोगों ने हमें आनंद के साथ स्वीकार किया, ग्रहण किया।
Following day, Paul went into James, and the elders were present.
और तब वो पौलुस समय लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन उपस्थित थे।
Paul began to tell them everything God had done among the Gentiles.
और जब आने जातियों के बीच में जो कुछ भी हुआ था, पौलुस उनको बताने लगा।
Now notice verse 20.
और तब उसके 20 पद को ध्यान दें।
James and them glorified God. They said, "You see, brethren, how many thousands among the Jews who have believed and they're zealous for the law."
और तब वो कहने लगा कि देखो भाइयों, कितने असंख्य लोग थे जो यहूदियों में से जो हजारों लोगों ने विश्वास किया है।
Now this is a third group of Jews.
और ये यहूदियों का तीसरा समूह था।
They're not unbelieving Jews.
ये अविश्वासी यहूदी नहीं थे।
They're not legalistic Jews.
ये वो नियमों में बंधे हुए यहूदी नहीं थे।
They are young, immature Jewish believers.
लेकिन यहाँ पर भी हैं जो जवान युवा और यहूदी विश्वासी हैं।
And they believe you're saved by grace through faith.
और वो ये विश्वास कर रहे हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही उनका उद्धार हुआ है।
But they still thought it would be good to obey the law.
और वो ये भी कह रहे हैं कि ये अच्छा है कि हम उस व्यवस्था का पालन करें।
And James told them this.
और तब याकूब ये कहता है।
Verse 22.
22 पद में।
What shall we do? They will hear that you have come.
तब अवश्य ये सुनेंगे कि तू यहाँ आया है।
Verse 21.
21 पद।
And they've been told that you're teaching the Jews among the Gentiles to forsake Moses.
और वो कह रहे हैं कि तू गैर यहूदियों के बीच में रहने वाले यहूदियों को ये सिखाता है कि मूसा की शिक्षा को त्याग दो।
these are weak Jewish believers.
ये यहाँ पर वो यहूदी जो विश्वासी तो थे पर परंतु निर्बल थे, कमजोर थे.
That have not fully understood their complete freedom in Christ.
उन्होंने अभी तक मसीह में जो पूर्ण स्वतंत्रता है उसको नहीं समझा था.
And James told Paul, "This is what you should do."
और तब याकूब पॉल उसको कह रहा, तुमको ये करना चाहिए.
Verse 23.
23 पद में.
We have four men under a vow.
कि हमारे यहाँ चार व्यक्ति हैं.
And you should purify yourself with them and pay their expenses and shave their head. They'll know that none of this is true.
और उन्होंने अपने 23 पद में उन्हें जाकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उन्हें खर्च दे कि वे अपने सिर मुंडवाएं.
Now was Paul compromising the gospel?
क्या पौलुस यहाँ पर सुसमाचार से समझौता कर रहा है?
What was he doing?
पौलुस यहाँ क्या कर रहा है?
He was being sensitive to young, weak believers.
यहाँ पर जो जवान यहूदी विश्वासी है उनके प्रति वो संवेदनशील है.
Three different context.
तीन विभिन्न संदर्भ हैं.
Unbelieving Jews.
अविश्वासी यहूदी.
They needed to hear the gospel.
उनको सुसमाचार सुनने की आवश्यकता
है. Paul didn't want to cause any confusion among them.
वो पौलुस नहीं चाहता उनके बीच में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो.
So he circumcised Timothy.
और इसलिए वो तीमोथी का खतना करता है.
A second group.
और दूसरा समूह.
Legalistic Jews.
वो जो नियमों में बने हुए यहूदी लोग.
They said, "Yes, you must believe, but you also must be circumcised."
तो ये सही है, तुम्हें विश्वास करना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें खतना भी करना चाहिए.
Paul said, "I will not
Paulus kata, मैं यहाँ पर खतना नहीं करूँगा.
Because you're saved by grace, not by works.
क्योंकि तुम्हारा उद्धार जो है वो अनुग्रह के द्वारा, वह काम कार्यों के द्वारा नहीं.
A third group.
तीसरा समूह.
Young Jewish believers.
जो यहाँ पर जवान युवा यहूदी विश्वासी हैं.
Paul said, "I do not want to cause them to stumble."
पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहता.
So I am willing to submit to this ceremonial law.
और इसलिए जो ये व्यवस्था के विधि है उसको पूरा करने में तैयार हूँ.
Paul was very sensitive to these different situations.
वो पौलुस जो था इन विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न समय में बहुत अधिक सचेत रहता था.
Any further questions on that question?
इस प्रश्न के ऊपर कोई और आपका प्रश्न है? अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई प्रश्न पूछना चाहता है?
The second question.
दूसरा प्रश्न.
Romans 13.
रोमियो 13 अध्याय.
Paul applied the law to believers.
पौलुस वो विश्वासियों को वो व्यवस्था का लागू करने बोलता है.
1 Timothy 1.
पहला तिमोथियस पहला अध्याय.
He said the law is not made for a righteous man.
कि पौलुस कहता है कि व्यवस्था धर्मियों के लिए नहीं है.
Did he contradict himself?
क्या वो अपने आप में स्वयं में विरोधाभास है?
Then what is the answer?
और उसका उत्तर क्या है? Sorry? Different context. Please.
What are the two different contexts?
वो कौन से दो विभिन्न संदर्भ हैं? पहले जो है देवर बिलीवर एंड दे नो द लॉ एंड ग्रेस. बट सेकेंड वन, अब दूसरे वन देवर जेंटाइल बट दे डोंट नो द लॉ.
ऑलराइट, एनी अदर आंसर्स?
कोई और उत्तर? कोई और उत्तर? पर बहुत अच्छा जवान बच्चे ने बताया, वो सोचिए आप लोग.
Now these are not just questions for a test.
ये परीक्षा के लिए, आपके टेस्ट देने के लिए, परख करने के लिए नहीं है प्रश्न.
These are real life situations.
ये आज भी जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना हम करते हैं.
And we must understand the relationship between the law and the gospel.
और इसलिए हमें जो सुसमाचार है और जो व्यवस्था है उसके मध्य जो संबंध है उसको समझना है.
And we must apply it properly in each situation.
और हर परिस्थिति में हम उनको सही रीति से उसको लागू करना है.
So this afternoon, I want to ask about 10 or 12 questions, and then we want to try to answer each one of them.
और इसलिए दोपहर में कम से कम 10 या 12 मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप उनके उत्तर दें.
So I want you to write these questions down.
और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन प्रश्नों को आप लिख दें.
Now our time is very short, so we'll have to survey this.
और हमें हमारे पास समय बहुत कम है. थोड़ा है इसलिए हमें इसको देखना है करना है.
These are very important questions.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है.
All preachers should understand the answer to these questions.
और इन प्रश्नों के उत्तरों को हर प्रचारक को जानना और समझना है.
Let me ask the questions and you write them down.
मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा आप और आप उनको लिखें.
I've got them here somewhere. Here they are.
मेरे पास यहाँ पर है.
First question.
पहला प्रश्न.
What is the law?
व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या है?
When the Bible talks about the law, it has different meanings in different context.
Sorry.
When the Bible uses the word law, different meaning, different context.
जब परमेश्वर का वचन व्यवस्था का उपयोग करता है, तो क्या विभिन्न प्रश्नों में विभिन्न उसके अर्थ हैं?
Second question.
दूसरा प्रश्न.
What is the purpose of the law?
कि उस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? उस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है?
Does the law have one purpose or several purposes?
क्या उस उद्देश्य जो व्यवस्था उसका एक ही उद्देश्य है या कई सारे उद्देश्य हैं?
Number three.
तीसरा.
What is the sinner's relationship to the law?
कि एक पापी का उस व्यवस्था के साथ क्या नाता या क्या संबंध है? एक पापी का उस व्यवस्था के साथ क्या नाता या संबंध है?
Number four.
चौथा प्रश्न.
What does it mean to be under the law?
व्यवस्था के अधीन होने का मतलब क्या है? व्यवस्था के अधीन होने का मतलब क्या है?
Bible talks about being under the law.
परमेश्वर का वचन बताता है कि हम व्यवस्था के अधीन थे.
नंबर फाइव.
पांचवा प्रश्न.
What is the curse of the law?
उस व्यवस्था का श्राप क्या है?
Paul talks about the curse of the law.
पौलुस व्यवस्था के श्राप की बात करता है.
नंबर सिक्स.
छठा प्रश्न.
What is Christ's relationship to the law?
मसीह का संबंध उस व्यवस्था के लिए क्या है? मसीह का संबंध उस व्यवस्था के लिए क्या है?
नंबर सेवन.
सातवां प्रश्न.
हाउ डिड क्राइस्ट फुलफिल द लॉ?
मसीह ने किस प्रकार से उस व्यवस्था को पूर्ण किया?
हाउ डिड क्राइस्ट फुलफिल द लॉ?
क्या यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूर्ण किया?
नंबर सेवन.
सातवां प्रश्न.
What? Number seven, number eight.
Eight, आठवां प्रश्न.
What is the relationship of law and gospel?
और तब आठवां प्रश्न है कि व्यवस्था और सुसमाचार का क्या संबंध है?
Number
nine. नवां प्रश्न.
What is the relationship of law to justification?
और उस नवां प्रश्न व्यवस्था का उस धर्मी ठहराए जाने से के साथ क्या संबंध है?
लॉ एंड जस्टिफिकेशन.
व्यवस्था और धर्मी ठहराया जाना.
नंबर नाइन.
नवा प्रश्न.
रिलेशनशिप ऑफ लॉ टू सैंक्टिफिकेशन.
उस व्यवस्था का पवित्रीकरण से क्या संबंध है?
लॉ एंड सैंक्टिफिकेशन.
व्यवस्था और पवित्रीकरण.
नंबर टेन.
दसवां प्रश्न.
Is the Christian under the law?
क्या मसीह व्यवस्था के अधीन है? क्या मसीह व्यवस्था के अधीन है?
नंबर
11. 11 नंबर.
12.
सॉरी 12
must the Christian obey the law?
क्या मसीहों को व्यवस्था का पालन करना चाहिए? क्या मसीहों को व्यवस्था का पालन करना चाहिए?
नंबर 13.
तेरा प्रश्न.
What is the believer's rule for his life? His rule for his life.
एक विश्वासी के लिए उसके जीवन के लिए क्या नियम है?
Is it the law of God?
क्या वो परमेश्वर के व्यवस्था है?
Or is it the life of Christ?
या मसीह का जीवन है?
Or is it both?
या दोनों है?
What is the believer's rule?
अब विश्वासी के जीवन के लिए नियम क्या है?
What does he look to? What does he follow?
उसको किस चीज को देखकर आगे बढ़ना है? किस चीज को देखकर वो आगे चलता है?
Number 14.
14वां प्रश्न.
What is holiness?
कि पवित्रता क्या है?
Is it obedience to law?
कि व्यवस्था का पालन करना है?
Or is it to be like Jesus Christ?
या मसीह यीशु के समान होना है, स्वरूपता में बढ़ना है?
Or is it both?
और यह दोनों है.
Another question.
एक और प्रश्न.
15,
yes.
What is the difference between legal obedience and gospel obedience?
जो ठहराए गए या तैयार किए हुए नियम है उनके अंतर्गत आज्ञाकारिता या सुसमाचार के अनुसार आज्ञाकारिता, दोनों में कौन महत्वपूर्ण है?
कानूनी
आज्ञाकारिता या सुसमाचारी आज्ञाकारिता, इन दोनों में कौन सा महत्वपूर्ण है?
नंबर
16वां प्रश्न.
Is there any power in the law for sanctification?
क्या व्यवस्था में कोई ऐसी सामर्थ है जो पवित्र बनाए? क्या व्यवस्था में पवित्रीकरण की सामर्थ है?
Does the law have any power or any energy for our sanctification?
क्या व्यवस्था में किसी प्रकार की ऐसी सामर्थ है जो मनुष्य को पवित्र बनाती है?
Number 17.
17वां प्रश्न.
If the Christian obeys or disobeys the law, does that affect his relationship to God? Whether he obeys or disobeys.
एक मसीह जब व्यवस्था का उल्लंघन करता है या उसको पालन करता है, तो क्या ये परमेश्वर के साथ जो संबंध, उस पर प्रभाव डालता है?
He obey or disobey, does that change his relationship with God?
जब यदि वो व्यवस्था को पालन करे या उसको तोड़े, तो क्या जो संबंध जो परमेश्वर से आता है उस पर कोई प्रभाव पड़ता है?
You understand the questions?
आप इन प्रश्नों को समझ रहे हैं?
Now let me ask you a question.
अब मुझे और आपसे प्रश्न पूछने दीजिए.
Could you answer those questions?
क्या ये आप इनका प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे?
According to the word of God.
परमेश्वर के वचन के अनुसार.
If you're going to be a useful preacher.
यदि आप एक प्रभावशाली
प्रचारक बनना चाहते हैं. Teach others correctly.
यदि आप लोगों को सही रीति से सिखाना चाहते हैं.
You must be able to answer those questions.
आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना सीखना है.
Any questions about the questions?
इन प्रश्नों के बारे में कोई प्रश्न है?
You want me to repeat any of them?
कोई है जो छूट गया है, रिपीट करना है? कोई प्रश्न छूटा? कौन सा छूटा? सॉरी, 15, क्वेश्चन नंबर 15.
लीगल ओबीडियंस एंड गॉस्पल ओबीडियंस.
कानूनी आज्ञाकारिता या सुसमाचार के अनुसार आज्ञाता, जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार आज्ञाकारिता या जो सुसमाचार है उसके अनुसार आज्ञाकारिता.
व्हाट्स द डिफरेंस?
इसमें भिन्नता क्या है? सुसमाचार का संबंध क्या है? वही वाला
रिलेशनशिप ऑफ द लॉ टू द गॉस्पल.
जो
दैट्स नंबर
8. हाँ, एक नंबर क्या है? सिक्स नंबर. सुनिए, किसने पूरे प्रश्न पूरे अच्छी तरह से लिखे हैं? किसने पूरे प्रश्न अच्छी तरह से लिखे हैं? वहां फिलिप, अब बताइए छह प्रश्न, छह का कौन सा है? छठा प्रश्न है कि यीशु मसीह के साथ व्यवस्था का क्या संबंध है? यीशु मसीह का व्यवस्था से क्या संबंध है? यीशु मसीह का व्यवस्था से. अच्छा, और आठवां कौन सा प्रश्न है? सुसमाचार और व्यवस्था का क्या संबंध है? आठवां प्रश्न। और कौन ये प्रश्न पूछा किसी का? नवा प्रश्न। हाँ, व्यवस्था का धर्मी ठहराए जाने से क्या संबंध है? व्यवस्था का धर्मी ठहराए जाने से क्या संबंध है? दीपक भाई का कोई छूटा? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। सोलह। क्या व्यवस्था में कोई ऐसी सामर्थ्य है जो उधर पवित्र करे? क्या व्यवस्था में पवित्रीकरण की सामर्थ्य है? So they will answer themselves or two by two or
no? We're gonna cover each question.
Okay.
Or do you understand what we're trying to ask?
आप समझें क्या पूछना चाह रहे हैं?
This is not just theoretical. This is practical.
ये केवल theoretical?
Not just.
हाँ? केवल किताबी बातें नहीं, लिखी हुई बातें नहीं है, लेकिन ये व्यवहारिक प्रश्न है ये, जो हमारे जीवन में संबंधित है।
And your understanding to these questions will affect your whole ministry.
अगर ये आप इन प्रश्नों को सही रीति समझेंगे तो आपके पूरी संपूर्ण सेवकाई पर वो प्रभावित करेगा।
All right, our time is short, but we want to cover this quickly.
हमारे पास यद्यपि समय कम है, फिर भी हम इसको शीघ्रता से देखना चाहेंगे।
I hope most of you are already familiar with this.
अच्छा माइक। आवाज नहीं है इसमें।
I hope most of you are already familiar with this.
मैं आशा करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इन सारी सब प्रश्नों से परिचित होंगे।
If you are, I just want to review it quickly.
और हम इसको बहुत ही शीघ्रता से इसको देखेंगे।
What is the law?
व्यवस्था क्या है?
First question.
पहला प्रश्न।
What is the law?
व्यवस्था क्या है?
In different contexts, the word has different meaning.
विभिन्न संदर्भ में विभिन्न अर्थ हैं।
For example,
उदाहरण के लिए,
sometimes it refers to the first five books of the Bible.
कभी-कभी ये पहली पांच जो पुस्तकें हैं बाइबल की, उनकी ओर ये संकेत करता है।
Psalm 119.
भजन संहिता 119.
Oh, how I love Thy law.
मैं कितना अधिक तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ, प्रेम करता हूँ।
The only law that was written at that time was the Pentateuch, or the first five books of the Bible.
वो सारे जो बाइबल की जो पहली पांच पुस्तकें हैं, जिनको पेंटेटूक कहते हैं, उसकी ओर संकेत कर रहा है।
That's all the Old Testament believer had.
वो उसी समय सारे जो पुराने नियम के विश्वासी हैं, उनके पास वही चीज थी उस समय।
Luke chapter 24.
लूका उसका 24 अध्याय।
Jesus opened their minds to understand the scriptures.
प्रभु यीशु मसीह ने उनके मस्तिष्क को खोला ताकि वो पवित्र शास्त्र को समझ सकें।
And he divided the scriptures into three parts.
और उसने उस व्यवस्था को तीन भागों में बांटा।
The law,
वचन को तीन भागों में बांटा।
The prophets,
व्यवस्था,
and the psalms,
व्यवस्था, भविष्यवक्ता और भजन।
What was the law?
व्यवस्था क्या?
He called it the law of Moses.
वो मूसा की व्यवस्था।
He's talking about the first five books of the Bible.
वो पहली बाइबल की पहली पांच पुस्तकें में बात कर रहा है।
So sometimes when Jesus or Paul or others use the word law, they're talking about the first five books of the Bible.
इसलिए कई बार जब प्रभु यीशु मसीह और पौलुस व्यवस्था के नाम को उपयोग करते हैं, तो वो उन व्यवस्था की पांच पहली पुस्तकों की बात कर रहे हैं।
Number two.
दूसरा.
Sometimes it refers to the ceremonial practices of the old religion, ceremonies.
वो जो पूरी जो पुराने धर्म की जो रीतियां विधियां हैं जिनको मना तथा उनसे संबंधित है।
Paul told the Galatians, "You are returning to the law."
पौलुस यहूदियों को कहता है, तुम व्यवस्था की ओर फिरने लगे हो।
He told the Colossians, you are observing again days and weeks and years and feasts and all of that.
और पौलुस कुलीसियों को लिखते हुए कहता है कि तुम अब फिर से वो दिन, समय और उन विधियों का पालन करने लगे हो।
Sometimes he uses the word law to describe the ceremonial law of Israel.
और इसलिए कभी कभी उन्होंने जो व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल किया है वो उन सारी विधियों को जो इसराइल के लोग वो मनाते थे.
नंबर थ्री.
तीसरा.
Sometimes when he uses the law, he describes the whole Old Testament.
और कभी कभी जब वो व्यवस्था की बात करता है तो पूरे पुराने नियम की बात वो करता
है. He talks about all the written scripture at that time.
और पूरे उस समय में जितना पवित्र शास्त्र लिखा जा चुका था उसकी ओर संकेत करता है.
Romans chapter 3.
रोमियो उसका तीसरा
अध्याय. Galatians chapter 3.
गलतियों उसका तीसरा अध्याय.
The scriptures have closed up all men under sin.
और कि पवित्र शास्त्र मनुष्य को उस सब पाप के अधीनता में डाल दिया है.
Talking about all the Old Testament.
वो सारे पवित्र शास्त्र की बात कर रहा है.
Number 4.
चौथा नंबर.
Sometimes he's just talking about the Ten Commandments.
कई बार वो केवल दस आज्ञाओं के बारे में बात कर रहा है.
And James chapter 2.
याकूब उसका दूसरा अध्याय.
And Romans chapter 13.
रोमियों उसका तेरा अध्याय.
And Galatians chapter 3.
गलतियों उसका तीसरा अध्याय.
And again in Romans chapter 3.
रोमियों उसका तीसरा अध्याय.
It's clear he's talking about the Ten Commandments.
वो ये सही है, वो उन दस आज्ञाओं के बारे में बात कर रहा है.
James chapter 2.
याकूब उसका दूसरा
अध्याय. If a man keeps the whole law and breaks one of them, he's guilty of them all.
यदि मनुष्य सारी आज्ञाओं का पालन करे परंतु उनमें से एक भी तोड़ दे तो वो सबका दोषी है.
And what is the law talking about? What law is he talking about?
वो कौन से व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है?
He goes on to say, "You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal."
और तो वो कहता है कि तू हत्या ना करना, तो चोरी ना करना, तो चार ना करना.
He's talking about the Ten Commandments.
वो उस दस आज्ञाओं के बारे में बात कर रहा है.
Another meaning of the word law.
और दूसरे व्यवस्था का शब्द यह है, अर्थ यह है.
Number 5.
पांचवा.
He just means an inward principle in his life, an inward principle.
जो उसके भीतरी अपने स्वयं के सिद्धांत हैं, उनके बारे में.
Romans chapter 7.
रोमियों उसका सात अध्याय.
He said, "I want to do right in my mind, but I see a different law in my members."
वो कह रहा है कि मैं अच्छा तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर एक दूसरी प्रकार की व्यवस्था को देखता हूँ.
He's talking about the presence of an influence in his life, a principle in his life.
कि वो एक रहा है कि उसके जीवन में जो भीतरी रीति से सिद्धांत उसको प्रभावित कर रहे हैं.
So when you see the word law in the Bible, you need to be sensitive to its context and its usage.
और इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन में व्यवस्था को देखते हैं या उसको शब्दों को देखते हैं तो आपको इस बात में बहुत गंभीर होना है कि उसका मतलब क्या है.
I trust you already understand these different uses of the word law.
मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात को समझ चुके हैं कि व्यवस्था का अलग अलग अर्थ क्या है.
Any questions on that?
इस पर कोई आपका कोई प्रश्न?
Now most Bible teachers divide the Old Testament law into three main categories.
बहुत सारे बाइबल जो शिक्षक हैं वो व्यवस्था को तीन भागों में बांट देते हैं, तीन श्रेणियों में बांट देते हैं.
Ceremonial law,
जो सेरेमोनियल लॉ का क्या मानेंगे, रीतिविधियों, रीतिविधियों का माना.
Civil law,
जो कानूनी नियम है.
And moral law,
और जो नैतिक नियम है.
Now some teachers do not have this distinction,
और कुछ शिक्षक हैं उनके पास इसमें अलगाव या भिन्नता नहीं देखते.
But I believe it can be a useful description of the different kinds of law.
और इसलिए ये अच्छा, मैं विश्वास करता हूँ ये अच्छा है कि हम विभिन्न प्रकार से इन को अलगाव के रूप में देख सकें.
So I want to repeat a law and you tell me which one it is.
और तब मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा जब आप कहते हैं व्यवस्था क्या है.
If your neighbor's cow wanders away, you should bring it back.
If your one
your neighbor's cow
yes.
runs away.
Yeah, yes, yes. यदि आपकी पड़ोसी की गाय कहीं चली जाती है तो आपको उसको वापस लाना है. ये नैतिक नियम है. नैतिक नियम है.
The ceremonial law governed Israel's religious life. Ceremonial
जो रीति विधियों के नियम है वो पूरी रीति से इसराइल के जो धार्मिकता के अनुसार रीतियां हैं उनको पालन करना है.
That was the law of the temple and the sacrifice and the priesthood.
और वो सारे वो मंदिर से जुड़े हुए हैं, बलिदानों से जुड़े हुए हैं, याजकपन से जुड़े हुए हैं.
The civil law governed their relationship to their fellow Jew.
और जो 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 सरकारी कह सकते हैं सामाजिक नियम है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं.
The moral law was the broadest law and it governed their relationship with God and man.
और जो नैतिक नियम है वो और अधिक बड़े स्थिति में है ताकि परमेश्वर के साथ जुड़ करके वो कार्यकारी हो सके.
So if your cow runs away, the Bible says you should bring it back, your neighbor's cow.
और यदि आपके पड़ोसी की गाय भाग जाती है तो बाइबल कहती है कि आपको उस पड़ोसी की गाय को वापस लेकर आना है.
What is that?
उसका मतलब क्या हुआ? कौन सा लॉ हुआ? मॉरल लॉ.
Now most teachers limit the moral law to the Ten Commandments.
बहुत सारे शिक्षक हैं वो नैतिक नियमों को केवल उन दस आज्ञाओं तक बांध देते हैं.
Does one of the Ten Commandments say, "Bring back your neighbor's cow"?
एक क्या उन दस आज्ञाओं में कोई आज्ञा एक ये है कि तू अपने पड़ोसी की गाय जो खो जाए उसको लेकर आना?
Another law.
दूसरा एक और नियम.
You should build a fence around the roof of your house so your friends won't fall over.
कि अपने घर के छत के चारों ओर तू बाउंड्री को बनाना, जो चौधरी बनाते हैं वो बनाना ताकि आपका मित्र उसमें से ना गिर जाए.
Which law is that?
ये कौन सा नियम था? है?
Civil law. All right, you should bring a spotless lamb for sacrifice.
और आपको उस बलिदान के लिए बिना दोष के निर्दोष मेमने को लाना है.
What law is that?
ये कौन सा नियम था? है?
Ceremonial law.
Very good.
You shall not sleep with your neighbor's wife.
आपको अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ नहीं सोना है. कौन सा नियम है? Moral and moral and civil.
The seventh commandment says you shall not commit adultery.
और सातवां आगे कहता है कि तुम्हें विचार ना करना.
The tenth commandment says you shall not covet your neighbor's wife.
और दसवां आज्ञा कहता है कि तू अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच ना करना.
And certainly it involves your civil or social responsibilities too.
और ये सही है, आपको इसमें सामाजिक जिम्मेदारी का मैं इसमें सम्मिलित होती है.
Now let me ask you another question.
मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूंगा.
Those three kinds of law.
ये तीन अलग प्रकार के नियम हैं.
Most teachers believe some are temporary and some are permanent.
बहुत सारे शिक्षक इस बात को मानते हैं कुछ हैं जो अस्थाई हैं, कुछ हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हैं.
Which are temporary?
वो अस्थाई क्या हैं? हाँ जी बोलिए, कोई बोल रहा है? Temporary.
No maybe to it for certain ceremonial law. What does the book of Hebrews say?
इब्रानी वास भाई ने कहा होता है वो जो सेमरिनी क्या बोले मैं बोल सकता हूँ रीति विधि के नियम है. तो भाई कह रहे हैं नहीं आपको मे भी नहीं बोलना चाहिए, होता है ये बोलना चाहिए. बाइबल क्या कहती है?
द टेम्पल
मंदिर,
द प्रीस्टहुड
वो याजकपन,
द सैक्रिफाइसेस
बलिदान,
द सैबथ डेज
जो जो सब्बतों का दिन है.
All pointed to whom?
वो किसकी ओर संकेत कर रहे हैं?
All were fulfilled in whom?
और किस में वो पूर्ण हुए हैं?
And they are done away with.
और वो किसके साथ पूर्ण किए गए?
The ceremonial law is finished and fulfilled in Christ.
So वो जो रीति विधि नियम बनाए हैं बने गए थे शुरू से इसराइलियों के वो पूर्ण किए गए हैं और अब समाप्त हो चुके हैं.
He is the temple.
अब यीशु मसीह हमारा मंदिर है.
Destroy this temple, he said, and in 3 days I will build it again.
उसने कहा इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में इसको उठा खड़ा करूंगा.
He is the sacrifice.
वो हमारा बलिदान है.
Paul said, "Christ, our Passover, has been slain."
वो कहता है कि पौलुस कहता है, यीशु मसीह हमारा वो मेमना है जो हमारे लिए बलिदान किया गया.
He is the high priest.
वो सबसे महान याजक है.
Not according to the tribe of Levi.
वो उन लेवियों के अनुसार नहीं.
But according to an eternal priesthood.
वो अनंत याजक पद के अनुसार वो है.
So the old temple is finished.
तो पुराना मंदिर समाप्त हो गया.
The old sacrifices are fulfilled.
जो पुराना बलिदान था वो पूर्ण हो गया.
The old priesthood is done away with.
और जो पुराना याजकपन था वो पूर्ण भी हो गया, चला गया.
So the ceremonial law was temporary.
इसलिए वो रीति विधि के जो नियम थे वो ये अल्पकालीन थे.
It had a purpose and that purpose is finished.
वो जो उनका उद्देश्य था उस समय था वो पूर्ण हो गया.
The civil law.
अब जो नैतिक नियम है, कानूनी नियम है,
contains general principles that are still useful today.
और जो एक सामान्य नियम है वो आज भी मेरे और आपके लिए लागू के लिए महत्वपूर्ण है.
You should care for your neighbor's property.
आपको अपने पड़ोसी की जो संपत्ति है उसकी ध्यान देना
है. You should protect your neighbor's safety.
आपको अपने पड़ोसी की जो सुरक्षा का ध्यान देना है.
You should have concern for your fellow man.
आपके दूसरे साथी के लिए आपके पास चिंता होनी है.
But the moral law,
लेकिन जो नैतिक नियम है,
as described as the Ten Commandments,
और जो दस आज्ञाओं में दिए गए हैं,
are they temporary or are they permanent?
क्या वो अल्पकालिक हैं या हमेशा हमेशा के लिए हैं? Permanent. Except the Sabbath.
He says 9 are permanent, 1 is removed.
क्या भाई ने कहा कि 9 जो हैं वो स्थाई हैं, एक जो है हट चुका है. लेकिन but we celebrate Sabbath in different way.
I think the Sabbath was
realized
because we need one day off.
That's why I'm saying that we celebrate Sabbath in different way.
Right.
Now it's changing with Jesus Christ.
Okay, we can discuss that later, but that's an important question.
लेकिन ये एक हम इस पर विचार करेंगे, पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न है.
So here's all we want to say in answer to our first question. First question.
और पहले प्रश्न में हम ये उत्तर देना चाहेंगे.
When the Bible uses the word law, it means different things in different contexts.
और इसलिए जब परमेश्वर का वचन व्यवस्था ही बात करता है, वो व्यवस्था विभिन्न संदर्भ में विभिन्न रीति से उसको वर्णित किया गया है.
And most teachers divide the law up in those three divisions.
और इसलिए बहुत सारे शिक्षक इन तीन भागों में इसको विभाजित करते हैं.
Second question.
प्रश्न दूसरा प्रश्न.
What is the purpose of the law?
कि उस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है?
Now we're narrowing our definition to the moral law.
और अब हम जो वो नैतिक नियम है उसको और सकरा बना रहे हैं.
And according to the Bible and according to most preachers, the moral law has three main uses.
और बाइबल के अनुसार और बहुत सारे शिक्षक के अनुसार जो ये नैतिक नियम है वो मुख्य तीन कारणों से हैं.
Number one,
पहला,
it restrains and holds back sin in society.
कि वो समाज में जो पाप है उसको वो नियंत्रित करें और रोक के रखें.
India has a law that says you shall not murder.
और भारत में एक नियम है कि तुम्हें हत्या नहीं करनी है.
America has a law that says you shall not murder.
और अमेरिका में भी ये नियम है, तुम्हें हत्या नहीं करनी.
China has a law that says you shall not murder.
और उस चाइना में भी ये नियम है कि तुम्हें हत्या नहीं करनी है.
And if you murder someone, you must pay a penalty.
और यदि तुम किसी की हत्या करो तो तुम्हें उसका दंड मिलेगा.
Romans 13.
रोमियों का 13 अध्याय.
Human government has a sword.
और जो मानवीय सरकार है उसके पास एक तलवार है.
And what is that sword?
और वो तलवार क्या है?
It is a sword of judgment and punishment.
और वो जो तलवार है वो न्याय की और दंड की तलवार है.
And who does it punish?
और किसको वो दंड देता है?
It punishes people that break the law.
वो उनको दंडित करता है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं.
Almost all nations believe and teach that it's wrong to steal and to murder and to commit adultery.
So sare rashtra ke log is baat ko vishwas karte hain aur sikhate hain ki tum vyabichar na karna, hatya na karna aur chori na karna.
And behind the human law there is God's law.
और उस मानवीय नियमों के पीछे जो है वो परमेश्वर के नियम दिए गए हैं.
And Paul says even the Gentiles who do not have the law had the law on their conscience.
वो कहता है, पौलुस कहता है कि यद्यपि यूनानी के लोग, अन्य जाति लोग, उनके पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवस्था उनके विवेक में लिखी गई है.
And they know by nature what is right and what is wrong.
और वो इसलिए वो अपने स्वभाव के अनुसार वो इस बात को जानते हैं क्या सही है या क्या गलत है.
So the moral law is to restrain evil acts.
और इसलिए वो जो नैतिक नियम है उनको सारी बुराइयों को नियंत्रित करने के लिए है.
You understand what we're saying?
आप क्या समझ रहे हैं जो हम कह रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं, सो रहे हैं? गुड मॉर्निंग.
Behind human government and human law is the moral law of God.
वो सरकार के जो नियम है उनके नियम के पीछे भी परमेश्वर के बनाए हुए नियम है.
A second use purpose of the law.
और दूसरा जो उद्देश्य है नियम व्यवस्था को इस्तेमाल करना है, नियमों को इस्तेमाल करना.
It is to reveal sin and to condemn sin.
कि उस पाप को प्रकट किया जाए और पाप को कंडम किया जाए, खंडित किया जाए.
It reveals man's sin.
वो मनुष्य के पाप को प्रकट करता है.
And it condemns man's sin.
और वो मनुष्य के पाप को कायल करता है.
Write these verses down.
इन पदों को आप लिख लीजिए.
Romans chapter 3.
रोमियों उसका तीसरा अध्याय.
And verse 19.
और उसका 19 पद.
Whatever the law says, it speaks to those under the law.
वो जो कुछ भी व्यवस्था कहता है वो उनके लिए कहे जो व्यवस्था के अधीन है.
Why?
क्यों?
So that every mouth would be shut and all the world be guilty.
और इसलिए हर एक मुंह बंद हो जाए और हर एक शब्द दोषी ठहरा जाए.
Verse 20.
बीसवां पद.
Through the law comes the knowledge of sin.
कि उस व्यवस्था के द्वारा ही पाप का बोध होता है.
What is sin?
पाप क्या है?
Sin is three things.
पाप तीन चीजें हैं.
Unbelief.
अविश्वास.
Rebellion.
विद्रोह.
Disobedience.
और अनज्ञाकारिता.
In the garden, Adam sinned.
और आदम की वाटिका में आदम ने पाप किया.
He did not believe God's word.
उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया.
He rebelled against God's authority.
परमेश्वर के अधिकार के विरोध विद्रोह किया.
And he disobeyed God's law.
और उसने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया.
God gave him a law.
परमेश्वर ने उसको नियम दिया था.
And what did that law say?
और उसने हमको क्या कहा गया था?
Don't eat that tree.
इस वृक्ष के फल को मत खाना.
If you eat that tree, you will die.
और यदि तुम उस फल को खाओगे तो मर जाओगे.
The devil told him a lie.
और शैतान ने उसको झूठ बोला.
He didn't believe God's word, he believed the devil's word.
उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया लेकिन शैतान के वचन पर विश्वास.
And he rebelled against God's authority.
और परमेश्वर के अधिकार के प्रति विद्रोह किया.
And he broke the law.
और उसने उस नियम का उल्लंघन किया.
Sin is breaking the law.
पाप उस व्यवस्था का उल्लंघन करना है.
That's what John says in 1 John 3.
और पहला योना उसके तीसरे अध्याय में योना कहता है.
Sin is lawlessness or breaking the law.
कि जो पाप है वो व्यवस्था का उल्लंघन है.
Romans chapter 7.
रोमियों उसका सातवां अध्याय.
Notice what Paul says.
देखिए पौलुस क्या कह रहा है.
Look at verse 7.
सातवां पद.
I would have never come to know sin except by the law.
मैं बिना व्यवस्था के पाप को नहीं जान सकता था.
Paul was a Pharisee. Outwardly, he was righteous.
वो पौलुस पास वो फरीसी था और बहुत से बाहर से बहुत धर्मी था.
He said in Philippians, according to the law, I was blameless.
और वो फिलिपियों में कहता है कि व्यवस्था के अनुसार तो मैं दोष रहित था.
But he didn't know the sin in his own heart.
लेकिन वो नहीं जानता था कि पाप उसके अंदर वास करता है.
And God brought one of the Ten Commandments to speak to his heart.
और तब परमेश्वर ने उस 10 आज्ञाओं को उसको दिया ताकि वे उसके हृदय से बात करें.
एंड व्हिच वन वाज इट?
और कौन सी बात थी वो?
लुक एट रोमन 7 वर्स 7.
उसके 7 अध्याय के 7 पद को देखें, रोमियो 7 अध्याय के 7 पद को.
व्हाट लॉ वाज इट?
क्या व्यवस्था थी?
Thou shalt not covet.
तू किसी का लालच ना करना.
Paul said, I would have not known about coveting unless the law said, thou shalt not covet.
Paulus कहता है यदि व्यवस्था ना होती तो इस बात को मैं नहीं जान सकता था कि तू लालच ना करना.
So the law is like a knife.
और इसलिए जो व्यवस्था है वो एक चाकू के समान है.
And it can cut into man's heart.
वो मनुष्य के हृदय को काट सकता है.
Many men are outwardly moral.
बहुत सारे लोग बाहर से बहुत ही नैतिकता इसमें भरे हैं.
But the law of God, the word of God, is like a sword.
लेकिन जो व्यवस्था है वो एक चाकू के समान है, तलवार के समान है.
And Hebrews 4 says it pierces to the division of soul and spirit and joint and marrow and can judge the thought and intent of the heart.
और इसीलिए रोमियो उसके 12 अध्याय 4:12 में ये लिखा है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान है जो मनुष्य के हृदय को आर पार छेदता भाता और गुदे गुदे को काटता है.
What is the purpose of the law?
व्यवस्था का उद्देश्य क्या है?
To reveal sin.
कि पाप को प्रकट करना.
And to condemn sin.
और जो पाप है उसको खंडित करना है.
Look in the book of Galatians.
गलतियों की पुस्तक में देखिए.
Galatians and chapter 3.
गलतियों उसका तीसरा अध्याय.
Verse 10.
उसका 10 पद.
As many of the works of the law are under a curse.
और बहुत सारी जो व्यवस्था के अधीन है वो शाप के अधीन है.
Cursed is everyone who doesn't keep all the things written in the book of the law.
अब जो व्यक्ति जो व्यवस्था में लिखी बातों पूर्ण न करता वो सब व्यवस्था वो शाप के अधीन है.
James chapter 2.
याकूब उसका दूसरा अध्याय.
If a man keeps the whole law and breaks one, he is guilty of them all.
यदि मनुष्य सारी व्यवस्था का पालन करे और एक भी व्यवस्था तोड़ दे तो वो उसका दोषी ठहरता है.
What is the purpose of the law?
व्यवस्था का उद्देश्य क्या हुआ?
To reveal sin.
कि वो पापों को प्रकट करे.
And to condemn sin.
और पाप के प्रति कायल करे.
Write this verse down.
इस पद को लिख लीजिए.
2 Corinthians chapter 3.
दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय.
There is the old covenant and the new covenant.
कि पुरानी व्यवस्था है और नई व्यवस्था है.
Look in chapter 3 verse 7.
वो तीसरा अध्याय के 7 पद को देखिए.
How does Paul describe the 10 commandments?
कि किस प्रकार से पौलुस इन 10 आज्ञाओं को वर्णित करता है?
Verse 7.
7 पद.
It's a ministry of death in letters written on stone.
वो कहता है कि जिसके अक्षर पत्थर के पट्टों के अंकित हैं ये.
Notice verse 6.
छठा पद.
The letter kills, but the spirit gives life.
अक्षर तो मारता है परंतु आत्मा जिलाता है.
Look at verse 9.
उन 9 पद को देखिए.
It is a ministry of condemnation.
कि वो सेवा है जो दोषी ठहराने वाली है.
He's talking about the old covenant and he's talking about the 10 commandments.
वो सारी पुरानी वाचा के बारे में बात कर रहा है और उसके अंदर जो 10 आज्ञा है उसके बारे में बात कर रहा है.
It kills.
वो मारती है.
It condemns.
वो दंडित करती है.
It reveals sin.
वो पाप को प्रकट करती है.
It cannot save you.
वो आपको बचा नहीं सकती.
It can only condemn you.
केवल आपको दोषी ठहरा सकती है.
No man can be saved by the law.
कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के द्वारा बचाया नहीं जा सकता.
No man can be justified by the law.
कोई भी व्यक्ति उस व्यवस्था के द्वारा बचाया नहीं जा सकता.
So we're talking about the 10 commandments.
हम उन 10 आज्ञाओं के बारे में बात कर रहे हैं.
It has several purposes.
उनके कई उद्देश्य हैं.
It restrains or holds back sin in society.
वो जो समाज में जो पाप है उनको थाम के बचा के रखना है.
It reveals and condemns sin.
वो पापों को प्रकट करता है और उसके प्रति आपको दोषी बिठाता है.
Number 3.
तीसरा.
What is the purpose of the law?
उधर व्यवस्था का उद्देश्य क्या है?
Now many Christians deny this third use.
बहुत सारे मसीह जो हैं इन तीसरी बात का इनकार करते हैं.
This is where the real controversy and the real problem is.
और यहाँ पर एक विरोधाभास पाया जाता है और एक संदेह है.
Third use.
तीसरा.
It guides the Christian's obedience.
कि ये मसीहों को एक आज्ञाकारिता के लिए अगुवाई करता है.
It has a use for the unbeliever and a use for the believer.
कि वो एक युवा विश्वासी के लिए और एक विश्वासी के लिए उपयोगी है.
Sometimes when Paul talks about the law, he talks about it in a very negative way.
कई बार पौलुस जब व्यवस्था के बारे में बात करता है बहुत नकारात्मक रीति से बात करता है.
Sometimes when he talks about the law, he talks about it in a very positive way.
और कई बार जब व्यवस्था के बारे में बात करता है तो बहुत सकारात्मक रीति से बात करता है.
Is he contradicting himself?
क्या वो उसमें आपस में वो विरोधाभास बात कर रहा है?
No, he's talking about two different uses of the law.
नहीं, वो दो विभिन्न बातों को रख रहा है जो व्यवस्था की उपयोगिता का है.
In our justification, the law can only condemn us.
वो हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए व्यवस्था केवल हमें दोषी ठहरा सकती है.
But in our sanctification, the law can guide us.
लेकिन हमें पवित्रीकरण के लिए व्यवस्था हमारी अगुवाई कर सकती है.
So sometimes when Paul says the law is not made for a righteous man, it's made for a sinner, what's he talking about?
जब पौलुस कहता है कि व्यवस्था जो है वो धर्मियों के लिए लेकिन अधर्मियों के लिए, तो इसका मतलब क्या है?
He's talking about the second use of the law.
कि वो दूसरे जो उपयोग है उस व्यवस्था का उसके बारे में बात कर रहा है.
The law is used to condemn and convict the unrighteous man.
कि व्यवस्था जो है वो जो अधर्मी व्यक्ति है उसको दोषी ठहराने के लिए है.
So when he says it's not made for the righteous, he means it is not made for the righteous justification.
और जब वो कह रहा है वो व्यवस्था धर्मियों के लिए नहीं है, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि वो व्यवस्था धर्मियों के धर्मियों की धार्मिकता के लिए नहीं है.
But in other context, he uses the Ten Commandments to instruct the believer in other places.
और दूसरे स्थानों में वो विश्वासियों को शिक्षा देने के लिए इसका उपयोग करता है.
Ephesians chapter 6.
इफिसियों का छठा अध्याय.
Children, obey your parents.
कि
children.
बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो.
Why?
क्यों?
This is the first commandment with a promise.
कि प्रतिज्ञा के साथ पहली आज्ञा है.
And what commandment does he quote?
और वो कौन सी आज्ञा को quote कर रहा है जो व्यवस्था में पाई जाती है?
Number
5.
Honor your father and mother.
कि अपने माता पिता का आदर करना.
And what is the promise?
और प्रतिज्ञा क्या है?
That you will live long time upon the earth.
ताकि तू बहुत दिन इस पृथ्वी पर जीवित रहने पाए.
Now that's a general promise. It's not always applicable in every situation. A general promise.
ये एक सामान्य प्रतिज्ञा है, वो हर जगह लागू नहीं है.
But Paul is using one of the Ten Commandments.
लेकिन पौलुस यहाँ पर उन दस आज्ञाओं में से एक आज्ञा का इस्तेमाल कर रहा है.
So listen carefully.
और इसलिए ध्यान से सुनिए.
When we talk about the law of God.
और इसलिए जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं,
and we talk about the law of God in the life of the believer,
कि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को एक विश्वासी के जीवन के बारे में बात करते हैं,
we're talking about God's permanent binding. You know what binding is? A controlling commandments for all believers at all times.
तो वो उसने बात कर रहा है कि ताकि वो एक विश्वासी के जीवन को हर समय में हर रीति से नियंत्रित कर सके.
God gave Adam one commandment.
परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी.
Don't eat the tree.
केवल वृक्ष के लिए.
He gave Israel many commandments.
लेकिन इसराइलियों को बहुत सारी आज्ञा दी.
But 10 commandments he wrote on stones with his own finger.
लेकिन वो 10 आज्ञाएं उसने अपने स्वयं उंगली से उन पत्थरों पे लिखी.
And they made an ark. What did they put inside the ark in the temple?
तब उन्होंने वाचा के संदूक में बना करके उस पर रखा.
They put three things.
उन्होंने तीन बातों को रखा.
What did they put inside the ark?
उस वाचक के संदूक में कौन सी तीन चीजें थी? हारून की छड़ी,
Aaron's rod,
manna,
और And the Ten Commandments.
और ये दस आज्ञाएं हैं.
What did that signify?
ये इसका किस बात को दर्शा रहा है?
God's provision.
परमेश्वर की जो प्रयोजन है.
You are to depend on God.
कि तुमको परमेश्वर पर निर्भर होना है.
The priesthood.
परमेश्वर का याजकपन.
Aaron's rod.
जो उसकी छड़ है.
And the law of God.
और परमेश्वर की व्यवस्था.
Now the manna rotted and went away.
और sorry.
The manna.
हाँ मन्ना जो है.
And the rod.
सब खत्म हो गया, पूरा हो गया.
But the Ten Commandments were written on stones.
लेकिन जो पत्थर है, वो जो दस आज्ञाएं पत्थर पर लिखी गई.
Finger of God.
वो परमेश्वर की उंगलियों से लिखी गई.
And they were put in the Ark of God.
वो वाचक के संदूक में रखी गई.
And it was to govern Israel's life.
और वो इस्राएलों के जीवन को संचालित करती थी.
And it was to direct Israel's obedience.
और वो सीधे इस्राएलियों के प्रति आज्ञाकारती थी.
Now the Ten Commandments were given to a people that were already redeemed.
वो जो दस आज्ञाएं उन लोगों दी गई थी जो छुटकारा पा चुके थे.
It was a physical redemption, not a spiritual redemption.
वो वहां पर शारीरिक छुटकारा था, आत्मिक छुटकारा नहीं था.
The Passover lamb was slain.
वो जो मेमना था वो बलिदान किया गया.
The blood was put upon the doorpost.
जो उन चौखटों में लहू लगाया गया, छिड़का गया.
The angel of death passed over.
वो जो मृत्यु का दूत था वो वहां से गया.
And God led them out of bondage.
और परमेश्वर ने उनको बंधुआई से निकाल लिया.
They were redeemed.
वो छुड़ाए गए.
But it was a physical redemption.
लेकिन वो केवल एक दैहिक शारीरिक छुटकारा था.
From a physical bondage.
उसमें वो शारीरिक बंधुआई से.
That was a picture of a future spiritual redemption.
वो उस बात की तस्वीर थी जो भविष्य में आत्मिक छुटकारा का था.
The Passover lamb pointed to Christ.
वो जो मेमना था, बतकियों का मेमना, वो यीशु की ओर संकेत कर रहा था.
They were in bondage to Egypt, but sinners are in bondage to sin.
वो मिस्र की बंधुआई में थे, लेकिन जो पापी लोग हैं वो पाप की बंधुआई में.
And they were redeemed out of bondage by the blood.
और वो उस बंधुआई से छुड़ाए गए लहू के द्वारा.
And God took them to Mount Sinai.
और परमेश्वर उनको उस सीनै पर्वत पर ले गया.
And he gave them the covenant with the Ten Commandments.
और तब वहां पर उन्हें उस वाचा को दस आज्ञाओं के साथ दिया.
And the Ten Commandments were to guide and to direct a redeemed people.
और वो दस आज्ञाएं छुड़ाए हुए लोगों को अगुवाई देने के लिए दी गई.
So what is the purpose of the Ten Commandments?
और इसलिए उन दस आज्ञाओं का उद्देश्य क्या था?
To restrain sin.
कि पाप को से बचाना.
To reveal and condemn sin.
कि पाप को प्रकट करना और उसको दोषी ठहराना.
And to guide and direct our path.
और हमारे जीवन को में अगुवाई करना और निर्देश देना.
Now God revealed other commandments.
और परमेश्वर ने और दूसरी भी आज्ञाओं को दिया.
He gave two great commandments.
और दो बड़ी आज्ञाओं को.
Love God.
परमेश्वर से प्रेम करो.
And love your neighbor.
अपने पड़ोसी से प्रेम करो.
And the Ten Commandments are an expression of those two commandments.
और जो दस आज्ञा हैं, इन दो आज्ञाओं से जुड़ी हुई हैं.
The first four commandments are our relationship with God.
पहली चार आज्ञाएं जो हैं परमेश्वर के संबंध में हैं.
And the last six commandments are our relationship with man.
और जो अंतिम छह आज्ञाएं हैं वो मनुष्य के संबंध में हैं.
If I gave you a test. If I gave you a test.
और जो मैंने आपको एक टेस्ट दिया है.
And I ask you to close your Bible and to write down the Ten Commandments in order. Could you do it?
और तब मैं आपको ये एक टेस्ट दे रहा हूं कि अपनी बाइबल को बंद कर दीजिए और अपने उसमें जो दस आज्ञा हैं उनको नियम के व्रत के अनुसार लिख दीजिए. दस आज्ञा हम कितने लोग लिख सकते हैं? ये हम बच्चों को लिखवाते हैं. हाँ, यस आई एम आस्किंग देम टू राइट. क्या आप लिख सकते हैं तो लिखिए. अपने बाइबल को बंद कर दीजिए और पहली दस आज्ञाओं को लिखिए.
आई वांट टू गिव यू 2 मिनट्स.
दो मिनट में दस आज्ञाओं को. पहली आज्ञा दूसरी आज्ञा
इज जस्ट लाइक दिस.
हाँ, बड़ा आसान है. पहली चार आज्ञाएं परमेश्वर के संबंध में, दूसरी छह आज्ञाएं मनुष्य के संबंध में. परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का दिन. I have explained them in short word. दस आज्ञा है व्यवस्था विवरण है उसका पांच अध्याय में है निर्गमन बीस अध्याय में निर्गमन बीस अध्याय व्यवस्था विवरण ये हम अपने बच्चों को यहाँ पर सिखाते हैं। मैं एक दिन पूछ कह रहा था अपने जाइन के भाइयों से कि आपका टेस्ट लूंगा मैं तो यहाँ पर ले लिया गया अगर आप नहीं लिख पाए तो जाके बच्चों से पूछे जो यहाँ पर आए थे। दस आज्ञा है
One minute.
एक मिनट और बाकी है तो परमेश्वर का नाम बैठना लेना तो किसी के सामने बना तो मोदी बना के ना तो ये होगा दिन मन मन ना माता पिता के आगे आधार का ना रोमन कहते के सामान मत करिएगा दस आज्ञा दसवीं आज्ञा को दो भागों में मार दें। आई एम टेलिंग देम डोंट डू दैट एज पर रोमन कैथलिक दे डू ना लास्ट टेन 10th commandment, they have divided into two things.
All right, that's it.
हो गया? कितने लिखा? कितना हाथ उठाइए कितने लिख लिया?
All right, what's the first commandment?
बम पहले आगे क्या है भैया?
तू मुझे छोड़ किसी का दूसरा ईश्वर करके ना मानना।
अच्छा।
मुझे छोड़ कर दूसरों का ईश्वर करके।
हाँ।
All right, what's the second commandment?
तू अपने लिए किसी तू परमेश्वर के
Third commandment. Fourth commandment. Remember the Sabbath day and keep it holy.
Okay.
Fifth commandment.
Panchwa, bhai prem. Acha.
Honor your father and mother. Sixth commandment.
Bhai ji. Bhuli. Tu hatya na karna.
Thou shalt not murder. Seventh commandment.
Seven boliye sathon ka aagya kiski?
Shall not commit adultery. Eighth commandment. Thou shalt not lie. Ninth commandment. Is that?
Jhoota.
Ninth commandment.
Aage piche.
Is that right? Thou shalt not steal.
Steal. To chori na karna. Yes.
Number 10. Thou shalt not covet. Now you should have learned that when you were a little child.
आप जब बच्चे थे तब से आपने इसको सीखना आरंभ किया होगा.
Why is it important to know those commandments?
क्यों इन आज्ञाओं को जानना जरूरी है?
Because those commandments work together with the gospel.
कि जो ये जो दस आज्ञाएं हैं वो सुसमाचार के साथ कार्यशील हैं।
The law kills
जो व्यवस्था मारती है काट करती है।
The gospel gives life
और सुसमाचार जीवन प्रदान करता है।
The law condemns us
कि व्यवस्था हमें दोषी चराती है।
The gospel justifies us
लेकिन सुसमाचार हमें धर्मी ठहराता है।
The law reveals our sin.
व्यवस्था जो है हमारे पापों को हमारे ऊपर प्रकट करती है।
The gospel forgives our sin.
लेकिन सुसमाचार हमारे पापों को क्षमा करता है।
And when you preach the gospel, you ought always, or you should also preach the law.
और जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो आपको व्यवस्था को भी प्रचार करना है।
If man doesn't understand his problem, he will not be interested in the solution.
अगर एक व्यक्ति अपनी समस्या को ना जानने के लिए रुचिकर हो तो उसका समाधान के जाने के लिए भी रुचिकर ना होगा।
All right, another question.
एक और प्रश्न।
What is the sinner's relationship to the law?
कि एक पापी का उस व्यवस्था से क्या संबंध है क्या नाता है?
How does Paul describe the lost man in his relationship to the law?
कि पौलुस किस प्रकार से अपने संबंध को उस खोए हुए व्यक्ति के साथ व्यवस्था के तरीके में जोड़ता है?
Remember we told you before.
हमने आपको पहले बताया था।
Where is he?
वो कहाँ है?
He's under the law.
वो व्यवस्था के अधीन है।
Romans chapter 3.
रोमियो उसका तीसरा अध्याय.
Verse 19.
उसका 19 पद.
Whatever the law says, it says to those under the law.
जो कुछ भी व्यवस्था कहती है वो लोगों से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है.
Galatians chapter 4.
गलतियों उसका चार अध्याय.
And verse 4.
और उसका चार पद.
In the fullness of time, God sent forth His Son.
और अपने समय के पूर्ण होने पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा.
Born of a woman.
वो
Born from a woman.
वो स्त्री से पैदा हुआ.
Then what does it say?
और तब क्या कहता वो?
Born where?
कहाँ उसने जन्म लिया?
Under the law.
वो व्यवस्था के अधीनता में उसने जन्म लिया.
Christ was born under the law.
कि मसीह जो है उस व्यवस्था के अधीन पैदा
हुआ. Why was he born under the law?
क्यों वो व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ?
That he might redeem those that are under the law.
ताकि वो उनको छुड़ाए जो व्यवस्था के अधीन है.
What is the lost man's relationship to the law?
कि एक खोए हुए व्यक्ति का संबंध उस व्यवस्था के साथ क्या है?
He's under the law.
एक वो व्यवस्था के अधीन है.
And what does the law say?
और व्यवस्था क्या कहती है?
Two things.
दो बातें.
Perfect obedience.
पूर्ण आज्ञाता सिद्धाज्ञाकारिता.
Not 99%.
99% नहीं.
100%.
100%.
And if you don't obey,
यदि आप उसको पालन ना करें,
it condemns you.
वो आपको दोषी ठहराएगी.
What is the curse of the law?
उस व्यवस्था का श्राप क्या है?
It is the condemnation of the law.
वो व्यवस्था का दोषी ठहराया जाना है.
What is the sinner's relationship to the law?
उस पापी का जो व्यवस्था के साथ क्या संबंध है? संबंध है.
He's under the law.
वो व्यवस्था के अधिकार में.
He must obey it. Perfectly.
उसको पूरी 100% आज्ञाकारी होना है.
If he doesn't obey it, he is condemned.
अगर वो ऐसा नहीं करता वो शापित होता है, दोषी चला जाता है.
Can any man be justified by the law?
क्या कोई भी व्यक्ति उस व्यवस्था द्वारा धर्मी ठहराया जाता है? नहीं.
There are two religions in the world.
संसार में दो धर्म हैं.
Now there are many religious type different kinds of people and there are many different denominations.
और बहुत संसार में बहुत प्रकार के धर्म हैं और विभिन्न धर्म समूह हैं.
But there's only two religions in the world.
लेकिन संसार में केवल दो धर्म हैं.
You heard that the Muslim mullah over there giving prayers?
ये अभी आपने मुसलमान को मॉस्क को सुना जो प्रार्थना कर रहे थे?
He is under one religion.
वो एक धर्म के अंदर है.
And you are here under another religion.
और आप यहाँ पर हैं जो दूसरे धर्म के अंदर में नीचे में.
There are two religions in the world.
संसार में दो धर्म हैं.
One of law.
एक व्यवस्था के अधीन में.
And one of grace.
और दूसरा अनुग्रह के अधीनता में है.
That's the only two religions in the world.
पूरे संसार में यही दो धर्म हैं.
The Muslim.
मुस्लिम भाई लोग.
The Hindu.
हिंदू.
The Buddhist.
बुद्धिस्ट.
They are under a false religion.
वो सारे वो झूठे धर्मों के अधीनता में हैं.
They say that if you do these laws, you will get a blessing, you will get to heaven, you will be reincarnated, you will be delivered.
वो ये कहते हैं कि यदि तुम इन व्यवस्था का नियमों का पालन करो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम छुटकारा पाओगे, तुम ये होगा, ये होगा, ये होगा.
Two religions.
दो धर्म.
Under law, under grace.
या व्यवस्था के अधीन या अनुग्रह के अधीन.
All right, another question.
एक कोई और प्रश्न.
What is Christ's relationship to the law?
एक प्रश्न है कि मसीह का उस व्यवस्था से क्या संबंध, क्या नाता?
What did Paul say in Galatians chapter 4?
गलतियों उसके चार अध्याय में पौलुस क्या कहता है?
Now we talked about this before.
हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं.
Verse 4, he was born under the law.
वो व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ.
Now that doesn't mean he was just a Jewish boy born into a Jewish system.
उसका मतलब ये नहीं कि वो यहूदी व्यक्ति यहूदी लड़का यहूदी विधियों के अनुसार उसका
उत्पन्न Certainly he was a Jewish boy.
ये सच है वो यहूदी बालक था.
And he was born into the old covenant system.
और वो पुरानी व्यवस्था की जो नियम थे तरीके थे उसके अनुसार उसका जन्म हुआ.
Paul means more than that.
लेकिन उससे बढ़कर कुछ और अर्थ है.
He was born as a legal person under the law.
कि वो एक नियम में बना हुआ व्यक्ति व्यवस्था के अधीन में उत्पन्न हुआ.
And he put himself under the law's requirement.
और वो जो व्यवस्था की मांग है उसके अंदर वो डाला गया.
And what is the law's requirement?
और व्यवस्था की मांग क्या है?
Perfect obedience.
एक सिद्ध आज्ञाकारिता.
And every day,
प्रत्येक दिन,
every hour,
हर एक घंटा,
every word,
हर एक शब्द,
every act,
हर एक कार्य,
every thought,
हर एक विचार,
he perfectly obeyed the law of God.
कि पूर्णतः परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना.
In his life, he obeyed and fulfilled its righteousness.
उसने अपनी आज्ञा के द्वारा उसने आज्ञा को पालन किया, उस धार्मिकता को पूरा किया.
In his death, he suffered its curse and its penalty.
वो मृत्यु के समय में उसने उस दंड को और उस शाप को सहा.
What does Galatians chapter 3 say?
तीसरा गलती उसका तीसरा अध्याय क्या कहता है?
Christ redeemed us from the curse of the law.
कि यीशु मसीह ने हमें उस पाप के श्राप से छुड़ा लिया.
How did he do it?
उसने कैसे किया?
He became a curse in our place.
कि वो हमारे स्थानों में वो शापित बना.
Cursed is everyone that hangs on the tree.
और जो वो शापित है वो प्रत्येक व्यक्ति जो काट पे लटकाया जाता है.
We were under the law.
हम उस व्यवस्था के अधीन थे.
Obey the law.
हम उस व्यवस्था को मान नहीं सकते थे.
The law condemned us.
और वो व्यवस्था ने हमें शापित किया.
Christ had compassion upon us.
परमेश्वर ने हमारे पर दया दिखाई.
He was born under the law.
वो उस व्यवस्था के अधीन जन्म लिया.
We could not obey. He obeyed.
हम पालन नहीं कर सकते थे लेकिन उसने पालन किया.
And he paid the penalty for our own sin.
और उसने हमारे स्वयं के पापों के लिए वो दंड और मूल्य चुकाया.
When he died on the cross, he was suffering the curse of the law.
और जब वो क्रूस पर मर रहा था तो उसने वो व्यवस्था के शाप को वो सह रहा था.
So what is Christ's relationship to the law?
और उस मसीह का उस व्यवस्था के साथ क्या संबंध है?
He was born under the law.
वो व्यवस्था के अधिकार में.
He perfectly obeyed the law.
उसने पूर्ण सिद्धता के साथ व्यवस्था का पालन किया.
And he suffered the curse of the law.
और उसने उस व्यवस्था के शाप को सहा.
All right, let me ask you a question now.
अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं.
Is the Christian still under the law?
क्या मसीह अभी भी व्यवस्था के अधिकार में है?
No. We are no longer under the law for our justification.
हम अपने धर्मी ठहराए जाने के लिए उस व्यवस्था के अधिकार में नहीं है.
Paul said he redeemed us out from under the law.
वो कह रहा है, पौलुस कहता है, उसने हमें उस व्यवस्था के अधीनता में से निकाल लिया, छुड़ा लिया.
We are not any longer under law, we are under grace.
वो कहता, पौलुस कहता है, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है परंतु हम उस अनुग्रह के अधीन है.
What is his meaning?
उसका मतलब क्या है?
We are not required to obey the law in order to be saved.
अब हमारे लिए ये आवश्यकता नहीं है कि हम उस व्यवस्था को पालन करें ताकि हम बचाए जा सकें.
We are free from the demands of the law.
अब हम उस व्यवस्था की मांग से स्वतंत्र या आजाद कर दिए जा चुके हैं.
The law says if you want to be justified, you must perfectly obey.
व्यवस्था कहती है यदि तुम्हें धर्मी ठहराया जाना है तो तुम्हें पूर्णतः व्यवस्था का पालन करना है.
But our substitute obeyed for us.
लेकिन हमारे स्थान पर जो ठहराया गया था उसने व्यवस्था का पालन किया.
The law says if you don't obey, there is a curse.
व्यवस्था कहती है यदि तुम उसका पालन ना करो तो तुम शापित हो.
Christ became a curse for us.
ये मसीह जो है मेरे और आपके लिए शापित बना.
So for our justification, we are no longer under the law.
और इसलिए हम धर्मी ठहराए जाने के कारण के लिए अब हम उसके अधीन नहीं हैं.
We are free from the law.
हम उस व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिए.
We have no obligation to obey the law for our salvation.
अब हमारे हमारे लिए उस उद्धार को पाने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है कि हम व्यवस्था का पालन करें.
Now listen carefully.
लेकिन ध्यान से
सुनिए. In our justification, the law was our enemy.
वो हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए व्यवस्था हमारी शत्रु थी.
It condemned us.
वो हमें दोषी ठहरा रही थी.
It judged us.
उसको हमारा न्याय कर रही
थी. It was not our friend.
वो हमारे मित्र नहीं थी.
It was our enemy.
वो हमारा शत्रु थी.
But we have been freed from sin.
लेकिन हम पाप से छुड़ाए गए.
We have been freed from the law.
हम व्यवस्था से आजाद किए गए.
We do not have to obey it in order to be saved.
हमें उस बचाए जाने के लिए उद्धार पाने के लिए उसको पालन नहीं करना था.
We no longer under its curse.
हम उसके शाप के अधिकार में अब नहीं.
Jesus obeyed and Jesus took the curse.
यीशु ने उसको पालन किया और उसने शाप को स्वयं अपने पर लिया.
So to answer the question, is the Christian under the law? Paul says no.
और इसलिए कि प्रश्न का ये उत्तर कि क्या मसीह लोग व्यवस्था के अधीन है, उसका उत्तर पौलुस कहता नहीं.
Any questions? We've talked about the definition of law.
हमने जो व्यवस्था की परिभाषा उसके ऊपर बात करी.
Different kinds of law.
हमने व्यवस्था की भिन्नता के बारे में बात करी.
The purpose of the law.
हमने व्यवस्था के उद्देश्य के बारे में बात करी.
The sinner's relationship to the law.
हमने पापी का संबंध व्यवस्था के बारे में बात करी.
Christ's relationship to the law.
मसीह का संबंध व्यवस्था के बारे में बात करी.
And the believer's relationship to the law.
और एक विश्वासी का संबंध व्यवस्था के बारे में.
Now we want to take a break.
और अब हम चाय पियेंगे.
But I want to ask you this question.
लेकिन हम एक प्रश्न करेंगे.
And when we come back from the break, I want you to answer.
और मैं चाहता हूँ जब हम ब्रेक के बाद वापस आए तब उस प्रश्न का आप हमें उत्तर दें.
If the Christian is free from the law,
अगर मसीह, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कंटिन्यूएशन है जो सेकंड पार्ट है. अगर मसीह उस विश्वास के द्वारा व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया गया है,
does the Christian have any obligation or duty to now obey the law?
क्या अब कोई विश्वासी के पास इस प्रकार का दबाव या उसका फर्ज है कि वो व्यवस्था का पालन करे, हाँ या ना?
Some say yes, some say no.
कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं ना.
Now this is an important question.
और ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है.
We are free from the law.
हम व्यवस्था से स्वतंत्र हैं.
We are free from its condemnation.
हम उसके उस शाप से, दंड से स्वतंत्र हैं.
Is the Christian obligated now to obey the law?
क्या एक मसीह के ऊपर ये बाध्यता है कि व्यवस्था का पालन करें?